शुक्रवार 14 अगस्त के नमस्कार भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी तियानजिन में आग पर नहीं पाया जा सका है काबू। सैकड़ों बेघर, फिजा में रसायन की तेज महक। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बस दुर्घटना, चलेंगे शिमला और जानकारी के लिए बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों की 23 अगस्त से होने वाली बैठक पर और भारत में बढ़ रही है विदेश जाकर तालीम हासिल करने वाले छात्रों की तादाद।
अगर आप ग्रोथ पूछेंगे तो पहले मतलब अगर मैं 600 में से 50-60 अंडरग्रेजुएट होते थे, अब 600 में से 200-250 अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स होने लग गए।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। चीन ने तियानजिन शहर में हुए धमाके की जगह पर सेना के 200 विशेषज्ञों को भेजा है जो वहां मौजूद रसायनों की सफाई करेंगे। जिस गोदाम में धमाका हुआ उसमें कई खतरनाक केमिकल रखे हुए थे। वहीं पीपल्स डेली अखबार के अनुसार बचाव दल वहां से करीब 700 टन खतरनाक रसायन हटाने में जुटा हुआ है। तियानजिन के पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो के प्रमुख वेने वुरई के अनुसार इलाके के प्रदूषण स्तर पर नज़र रखी जा रही है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमले में शामिल 7 मुजरिमों में से 6 को मौत की सज़ा और 1 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि थल सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने इन सज़ाओं की पुष्टि कर दी है, लेकिन मुजरिमों के पास इसके खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने का अधिकार है। दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए हमले में 140 से अधिक लोग मारे गए थे जिनमें 130 से ज़्यादा बच्चे थे। अमेरिका ने पिकासो की बनाई हुई एक पेंटिंग फ्रांस के अधिकारियों को सौंप दी है। द हेयर ड्रेसर नाम की ये पेंटिंग 9 महीने पहले चोरी हो गई थी। इस पेंटिंग की कीमत करीब 1.5 करोड़ डॉलर यानी कि 97 करोड़ रुपए के आसपास है। इस पेंटिंग को अमेरिका के कस्टम अधिकारी ने पकड़ा। इस पेंटिंग को जहाज के जरिए बेल्जियम से न्यू जर्सी लाया गया था। अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट की निदेशक सारा सेल्डाना ने कहा, हमें पता है कि ये पेंटिंग बहुत ही कीमती है और हमें इस बात पर गर्व है कि इस तरह की पेंटिंग को हम उसके असली मालिकों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं और अब इसे एक बार फिर दुनिया के लिए प्रदर्शनी पर लगाया जा सकेगा। अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट की निदेशक सारा सेल्डाना। अलकायदा के नेता अयमन अल जवाहिरी ने तालिबान के नेता मुल्ला अख्तर मंसूर को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। अलकायदा ने एक ऑडियो संदेश में यह घोषणा की है। मुल्ला अख्तर मंसूर की स्वीकृति की खबर अलकायदा की मीडिया इकाई अल साहब ने दी और ये ताज़ा बयान जवाहिरी का पिछले साल सितंबर के बाद पहला संदेश माना जा रहा है। तालिबान ने मुल्ला मंसूर को अपना नेता बनाया है। हालांकि इस बीच इस बात को भी लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या जवाहिरी जिंदा है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय का मानना है कि खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले समूह का सामना कर रही कुर्द सेना रासायनिक हथियारों के हमले की चपेट में आ गई है। उत्तरी इराक में कुर्द सेना और इस्लामिक स्टेट समूह में लड़ाई चल रही है। मंगलवार को हुई गोलाबारी का संदर्भ देते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ कुर्द लड़ाकुओं को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन जर्मनी के सैन्य सलाहकारों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा है जिसे आप अपने रेडियो सेट के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। बुधवार रात को तियानजिन शहर के एक इलाके में धमाकों के बाद जो आग लगी थी उस पर पूरी तरह से अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। धमाकों के असर से पास के मकान तबाह हो गए हैं, गाड़ियां जल गई हैं और फिजा में एक तेज़ बदबू फैली हुई है जिसकी वजह से वहां देर तक रुक पाना भी मुमकिन नहीं। मकानों को हुए नुकसान की वजह से सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने को मजबूर हैं। बीबीसी संवाददाताओं ने इस पर रिपोर्टें और सूचनाएँ भेजी हैं, उन सब का सार सुने अमल चौधरी से।
तियानजिन शहर में धमाके वाली जगह पर सेना के 200 विशेषज्ञों को भेजा गया है जो वहां मौजूद रसायनों की जांच और उसकी सफाई करेंगे। उन्हें आग बुझाने के काम में लगे हुए दलकर्मियों को भी ये बताना है कि वो आग पर किस तरह जल्द से जल्द काबू पा सकते हैं। بدھوار آدھی رات جس گودام میں دھماکوں کے بعد آگ لگی تھی وہ ابھی تک پوری طرح بجھی نہیں ہے۔ علاقے میں رہ رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہوا میں ایک عجیب سی درگندھ پھیلی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں جل رہی ہیں۔ دھماکے کے بعد قریب 35,000 لوگ استھائی آشروں میں رہ رہے ہیں۔ چین کی سرکاری نیوز ایجنسی شنوا کے انوسار بچاؤ دل گھائلوں کو سہایتا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شنوا نیوز ایجنسی کو دیے بیان میں کمپنی روئے ہی لاجسٹکس نے کہا ہے کہ دھماکے کے بعد اس کے کئی کرمچاری لاپتہ ہیں۔ اس حادثے میں دمکل کے بھی کم سے کم 17 کرمیوں کی موت ہو گئی ہے۔ تیانزن میں بدھوار آدھی رات کے بعد دو دھماکے ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ آگ کا گولا اتنا بڑا اور اونچا تھا کہ اسے انترکش سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہیں ان دھماکوں سے پیدا ہوئے کمپن نے پاس کے کئی کلومیٹر علاقوں میں مکانوں کی کھڑکیوں کو نکال کر پھینک دیا اور ان کے شیشے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ بندرگاہ کا بھی کافی حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ علاقے میں کھڑی سینکڑوں کاریں ملبے میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ برٹین سے اپنی پتنی کے پریوار سے ملاقات کرنے آئے جیمز ٹیلر کا گھر دھماکے والی جگہ سے قریب 4 میل دور تھا، پھر بھی انہیں اس کا احساس صاف طور پر ہوا۔ وہ کہتے ہیں،
We could see the fireball in the sky from the first explosion and we felt the windows shake in the
پہلے دھماکے کے بعد ہم نے آگ کا گولا آسمان میں دیکھا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپارٹمنٹ کو بھی ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کے بعد میں اور قریب سے دیکھنے کے لیے کھڑکی کے پاس گیا اور تبھی دوسرا دھماکہ ہوا اور وہ پہلے والے سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ پورا آسمان نارنگی رنگ میں رنگ گیا تھا۔ میں نے ایک تیز ہوا بھی محسوس کی جس نے مجھے تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیا۔ جیمز ٹیلر کے شبد۔ دھماکہ روئی ہے لاجسٹکس نامک کمپنی کے گودام میں ہوا تھا۔ اس گودام میں سوڈیم سائنائڈ اور ٹولوئن ڈائسو سائنیٹ جیسے خطرناک کیمیکل رکھے ہوئے تھے۔ وہیں پیپلز ڈیلی اخبار کے انوسار بچاؤ دل گودام میں موجود قریب 700 ٹن سوڈیم سائنائڈ ہٹانے میں جٹا ہوا ہے۔ حالانکہ علاقے میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ بھی ڈالنے کی تیاری ہے جس سے اس خطرناک کیمیکل کے اثر کو کم کیا جا سکے۔ تیانزن کے پریاورن سنرکشن بیورو کے پرمکھ وینے ورئی کے انوسار علاقے کے پردوشن استر پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اس ماحول میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ابھی ہمارے مانکوں کے انوسار خطرناک استر پر نہیں پہنچا ہے۔ تیانزن کے پریاورن سنرکشن بیورو کے پرمکھ وینے ورئی کے شبد۔ سرکاری میڈیا کے انوسار تیانزن میں بدھوار کو ہوئے دھماکے میں 50 لوگ مارے گئے تھے اور قریب 400 سے ادھک گھائل ہوئے ہیں۔ ابھی تک فی الحال دھماکے کی وجہ کا پتہ نہیں لگ سکا ہے اور نہ ہی یہ اسپشٹ ہے کہ دھماکے میں کوئی رسائن لیک ہوا ہے یا نہیں۔ حالانکہ پردھان منتری لی کیچیانگ نے معاملے کی نشپکش جانچ کا بھروسہ جتایا ہے۔
امل چودھری سنا رہے تھے ایک رپورٹ تیانجین میں ہوئے دھماکے کے بارے میں۔ اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کی طرف۔ ستا پکش اور وپکش کے بیچ جاری توتو میمے میں سنسد کا مانسون ستر انشچت کال کے لیے استھگت ہو گیا۔ دونوں پکشوں میں جاری ٹکراؤ کی وجہ سے سنسد میں کام کاج نہ کے برابر ہوا اور پورے ستر میں صرف ایک ہی ودھیک پاس ہو سکا۔ سرکار اور وپکش دونوں اس کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار بتا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ سشیلا سنگھ۔
کل لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارواہی انشچت کال کے لیے استھگت ہونے کے بعد ستا پکش اور وپکش نے سڑک کا رخ کیا۔ للت مودی کی کتھت مدد کے مدعے پر سنسد ٹھپ کرنے والی کانگریس نے سڑک پر بھی یہی مدعا اٹھایا۔ کانگریس اپادھیاکش راہل گاندھی نے پردھان منتری نریندر مودی کو للت مودی کو واپس لانے کی چنوتی دی۔
اب یہاں پہ میں مودی جی سے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، میں آپ کا وپکش کا نیتا ہوں، آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، للت مودی کو پکڑ کے یہاں لاؤ، آپ کو ہندوستان چانس دے رہا ہے۔
دوسری طرف بھارتی جنتا پارٹی کی اگوائی میں این ڈی اے کے سانسدوں نے وجے چوک سے راشٹرپتی بھون تک لوکتنتر بچاؤ مارچ نکالا۔ اس میں گرہ منتری راجناتھ سنگھ، ودیش منتری سشما سوراج سمیت کئی ورشٹھ منتری اور سانسد شامل تھے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں نے کانگریس کو وکاس اور لوکتنتر ویرودھی بتایا۔ کیندریہ منتری روی شنکر پرساد نے کہا،
بالکل آلوکتانترک اور فاسسٹ مینٹلٹی ہے، اسی لیے ہم دیش کو بتانے آئے ہیں کہ ہم لوکتنتر کے پرتی کمٹ ہیں، وکاس کے پرتی ہیں، اور جی ایس ٹی بل نہیں انہوں نے پاس ہونے دیا۔ اور کل بحث میں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے پاس ایک جواب نہیں تھا۔
مانسون ستر میں بنے رہے گتیرودھ کی وجہ سے پورے ستر میں صرف ایک ہی بل پارت ہو سکا۔ لوک سبھا میں 4 ودھیک پاس ہوئے لیکن راجیہ سبھا میں ان کا راستہ صاف نہیں ہو پایا۔ پی آر ایس لیجسلیٹو ریسرچ کے آنکڑوں کے مطابق بیتے 5 ورشوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ سنسد میں شروعاتی 2 ہفتوں میں کوئی کام نہیں ہو سکا۔ مانسون ستر شروع ہوا تو سنسد کے سمکش کل 65 ودھیک لمبت تھے۔ इनमें से सिर्फ 10 ही सदन में पेश किए जा सके। कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई तो लंबित विधेयकों की संख्या बढ़कर 68 हो चुकी थी। राजनीतिक विश्लेषक इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं मानते। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश,
कन्फ्रंटेशन की राजनीतिक डेमोक्रेसी में अच्छी नहीं है। संसदीय सत्र का इस तरह से जाया होना ये न तो इन दलों के हित में है, न सरकार के हित में है, न जनता के हित में है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों। मेरा ये मानना है कि कन्फ्रंटेशन जो है, टकराव जो है, दो तरफा था और सरकार चूंकि नेतृत्व में है तो उसको लीड करना चाहिए था इस कन्फ्रंटेशन को या इस टकराव के समाधान का कोई रास्ता।
सरकार की कोशिश मानसून सत्र में GST बिल पास कराने की थी। सरकार के पास इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का रास्ता अब भी खुला है।
रिपोर्ट सुना रही थी सुशीला सिंह। और खबर आ रही कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक बस पहाड़ी से गिर गई है। सीधे चलते हैं शिमला, वहां मौजूद हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हिमाचल प्रदेश संवाददाता अश्वनी शर्मा। अश्वनी, ये बताइए कि किसी तरह की कोई आधिकारिक सूचना इस मामले में मौतों को लेकर या घायलों की?
ये देखिए, ये हादसा कल हुआ था, इसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और 8 लोग उसमें घायल हुए हैं। ये चंबा एक हमारा जिला है हिमाचल प्रदेश का, जो जम्मू कश्मीर से लगता हुआ है। वहाँ बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़क को कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो चालक है उसने बस को आगे बढ़ाया, उस वजह से बस नीचे खड्ड में गिर गई, 300 फीट नीचे चली गई, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु तो घटना स्थल पर हो चुकी है और बाकी लोगों को घायल जो हैं वो उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी शर्मा इस जानकारी के लिए। और अब भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच 23 और 24 अगस्त को जो बातचीत होनी है, वार्ता के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज आ रहे हैं। उसके लिए हमारे सहयोगी संदीप राय ने दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन से बात की और पूछा कि मौजूदा हालात में जब दोनों मुल्कों में तनाव बढ़ता दिख रहा है, बातचीत कितनी उम्मीद जगाती है?
देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी किसी भी वार्तालाप पर कोई उम्मीद बिठाना मेरे ख्याल एक लिहाज से अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। तो अगर इतिहास देखा जाए तो उम्मीद बांधना मेरे ख्याल नामुनासिब होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर से एक नया प्रोसेस शुरू हो रहा है। बात केवल दो ट्रैक्स पे होगी, एक आतंकवाद के मुद्दे पर और दूसरी बातचीत होगी जो रेंजर्स और BSF या DGMOs के बीच में जो एक और ट्रैक शुरू करने की बातचीत है, ताकि बॉर्डर पर मैनेजमेंट बेहतर हो पाए।
उफा में जो दोनों देशों के PM मिले थे, क्या आपको लगता है कि जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक विश्वास जाहिर किया आगे बातचीत चलाने का, उसके बाद से कुछ बदलाव आया है दोनों देशों के रिश्ते में?
भाई, बदलाव अगर कुछ आया है तो वो मेरे ख्याल एक तरीके से मनफी बदलाव ही आया है, क्योंकि जिस तवातर से हमने आतंकवाद की घटनाओं को देखा है उफा के बाद, 3 या 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं, एक पाकिस्तानी आतंकवादी जो है वो रंगे हाथ भी पकड़ा गया है, तो ये तमाम घटनाएं तो हुई हैं। और एक
ये जो चरमपंथी पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर में, क्या ये मुद्दा उठेगा वहां पे, क्योंकि अब तो उनकी नेशनैलिटी का भी पता चल गया है कि वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी का है वो?
देखिए, उठेगा तो जरूर, लेकिन मेरे ख्याल भारत में एक ये भी सोच बन रही है कि पाकिस्तान ने उफा में जो डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए उसके बाद शायद एक दोबारा से उस पर जब उन्होंने सोचा तो उनको ये लगा कि ये प्रोसेस उनको सूट नहीं करता, और शायद एक जो कारण है जो तवातर से आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तान में एक कैलकुलेशन थी कि अगर इस तरह से घटनाएं हो तो भारत का जो एक स्वाभाविक एक रिएक्शन आता है, एक तरीके का नीजक रिएक्शन भी आप मान सकते हैं कि भाई बातचीत करने का फायदा क्या है अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, तो शायद वही रिएक्शन हो। मेरे ख्याल भारत की सरकार ने समझदारी दिखाई कि पाकिस्तान को इसी पर रखा और इससे उनको हटने नहीं दिया, और क्योंकि आतंकवाद पर मुद्दा है तो लाजम है कि जो अभी इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो गुरदासपुर में हुआ हो या वो इस ये जो आतंकवादी पकड़ा गया है इसका मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जरूर उठेंगे।
अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बार बार जो इतिहास की बात आप कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार्ताओं का इतिहास है, उसमें लगातार ये देखा जाता है कि वार्ता शुरू होती है, फिर अचानक कोई घटना घटित होती है और वार्ता फिर बेपटरी हो जाती है। तो आखिर इन वार्ताओं के पीछे कारण क्या है, क्यों वार्ताएं क्यों शुरू होती हैं, क्योंकि इन वार्ताओं से रिश्ते में तो कोई सुधार नहीं आता। क्या ये अमरीका या चीन के दबाव में वार्ताएँ करने के लिए पाकिस्तान तैयार होता है, या भारत पर अमरीका का दबाव होता है, या अंतर्राष्ट्रीय कोई इस तरह की का दबाव काम करता है जिसकी वजह से इनको बार बार बातचीत की टेबल पर आना पड़ता है?
देखिए, एक तो ये जरूर है कि कुछ हद तक तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होता है, क्योंकि और आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होती नहीं है। दोनों मुल्कों के अंदर भी एक ये सोच पाई जाती है कि चलिए अगर कुछ और नहीं है तो बातचीत करके ही देख लेते हैं, शायद इसमें से कुछ निकल जाए।
और एक बार फिर अखबारों के साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अमल चौधरी। अमल, ये बताइए कि क्या है, मानसून सत्र छाया हुआ है
हर जगह? मानसून सत्र की ही खबरें हैं, जैसे कि आखिरी दिन भी मानसून सत्र में धुल गया है, उसी को लगभग सभी अखबारों ने अपनी प्रमुख खबर बनाया है। अंग्रेजी अखबारों की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है आखिरी दिन सबसे खराब शो। इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक है सत्र खत्म, प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि सड़कों पर उतरें और कांग्रेस को नकाब करें। वहीं द हिंदू ने लिखा है सत्र खत्म
और उधर कांग्रेस उतरी हुई है।
हाँ जी बिल्कुल, वो हर तरह उनका विरोध अभी भी जारी है। और द हिंदू लिखता है सत्र खत्म लेकिन कटुता जारी। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने एक अलग खबर को अपना प्रमुख खबर बनाई है, जिसमें उन्होंने मैगी की खबर को प्रमुखता से छापा है। अखबार लिखता है हाईकोर्ट ने मैगी पर लगे बैन को हटाया, 6 सप्ताह में दोबारा परीक्षण कराने के आदेश। वहीं हिंदी अखबारों की बात करें तो
शर्त के साथ,
जी बिल्कुल, 6 हफ्ते तक इनको मौका दिया है इनको टेस्ट कराने के लिए। वहीं हिंदी अखबारों की बात करें तो जनसत्ता लिखता है संसद से सड़क तक, हिंदुस्तान हिंदी का शीर्षक है संसद के बाद सड़क पर संग्राम। नवभारत टाइम्स ने लिखा है मानसून सत्र हुआ बर्बाद, अब सड़क पर होगी लड़ाई। दैनिक भास्कर का शीर्षक है सड़क पर आई संसद की लड़ाई। नई दुनिया ने लिखा है कि आजादी के जश्न से पहले सियासी जंग, तो अमर उजाला का शीर्षक है सरकार बनाम गांधी परिवार। अन्य खबरों की बात करें तो अमर उजाला में राधे माँ की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है, और NSA स्तर की वार्ता से पहले पाक ने हाफिज सईद पर कसा शिकंजा। और ट्विटर का उपयोग करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, और इसमें उन्होंने लिखा है कि अब जो ट्विटर पे आप जो ट्वीट करते हैं वो अब 10,000 कैरेक्टर्स का हो सकता है, जो पहले 40 तक लिमिटेड था, 40 तक लिमिटेड था, वो अब 10,000 कैरेक्टर तक हो सकता है।
तो मतलब पूरा निबंध लिख सकते
जी हैं। पूरा निबंध आप फेसबुक की तरह उस पर पोस्ट कर सकते हैं, जैसे आप पोस्ट करते हैं उस पर भी आप काफ़ी लंबा चौड़ा अपने दिल की बात एक बार में लिख सकते हैं। और दूसरी अन्य खबरों की बात करें तो GST पर विशेष सत्र बुलाने का संकेत दिया गया है। और एक बहुत ही एक खबर एक और छाई, इसमें एक तस्वीर है राहुल की चीट शीट, जिसमें एक फ़ोटो है जिसमें लिखा हुआ है कि राहुल ने उसमें रोमन हिंदी में कुछ लिखा है और उसी के हिसाब से वो अपनी बातें कर रहे हैं। तो ये एक फ़ोटो काफ़ी चर्चा में है अखबारों में भी।
बहुत बहुत शुक्रिया अमल चौधरी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब देखते हैं कि किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नज़र।
पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर देश के सभी शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं दिल्ली में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। सभी मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग आज और कल बंद रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के अनुसार शुक्रवार शाम 6 बजे से शनिवार की दोपहर 2 बजे तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं पाकिस्तान में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुरक्षा के तहत सभी मोबाइल कंपनियों की सर्विस सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजधानी इस्लामाबाद में बंद कर दी गई है। ब्रसल्स में यूरोजोन के वित्त मंत्री आज ग्रीस और उसके कर्जदाताओं देश के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान ग्रीस को दिए जाने वाले तीसरे बेल आउट पैकेज की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी आज क्यूबा की यात्रा पर पहुंचेंगे। हवाना में एक कार्यक्रम के दौरान वो वहां अमरीकी दूतावास का उद्घाटन करेंगे। क्यूबा और अमरीका के रिश्तों में कई वर्षों से खटास रही थी, लेकिन अब दोनों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। वहीं गोल में भारत श्रीलंका के बीच चल रहे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का मैच खत्म होने तक श्रीलंका की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी। श्रीलंका अभी 187 रन से ट्रेल कर रही है और उसके 2 विकेट गिर चुके हैं। प्रो कबड्डी लीग में आज 2 मैच खेले जाने हैं। पहला मैच बंगाल वॉरियर्स और पटना पाइट्स के बीच बेंगलुरु में रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच बेंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली के बीच रात 9 बजे से बेंगलुरु में शुरू होगा।
अब दुर्घटना और राजनीति के बाद अब कुछ पढ़ाई लिखाई की बात। भारत से उस शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वालों की संख्या अब हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। इनमें से कुछ छात्र देश के अच्छे संस्थान में दाखिला ना मिल पाने की मजबूरी की वजह से बाहर जाते हैं, तो कुछ बेहतर विकल्पों के लिए विदेशी संस्थानों का रुख करते हैं। एक रिपोर्ट के साथ अमर शर्मा।
देश की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ 54,000 सीटें उपलब्ध होने की वजह से हर साल हजारों विद्यार्थी अपने पसंद के कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलने से मायूस हो जाते हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लगभग मुफ्त होती है, इसलिए वहाँ एडमिशन के लिए मारामारी होती है। सीटें कम, आवेदक ज्यादा, लिहाजा एडमिशन के लिए कट ऑफ 95% अंकों से भी ज्यादा तक पहुँच जाता है। दिल्ली में अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट्स के डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल बताते हैं,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको 95, 96, 97% चाहिए, बहार जाते हैं तो उनका 85% के ऊपर में एडमिशन हो जाता है।
साल में कितने बच्चे चल जाते हैं?
अगर आप पूरे इंडिया से पूछेंगे तो करीबन 3 से 3 लाख जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तकरीबन 500-600 स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ साल में जाने के लिए बाहर। अगर आप ग्रोथ पूछेंगे तो पहले मतलब अगर मैं 600 में से 50-60 अंडरग्रेजुएट होते थे, अब 600 में से 200-250 अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स होने लग गए।
विदेश में पढ़ाई का खर्च उठा पाने में सक्षम परिवार ही अपने बच्चों को विदेश भेज पाते हैं। हालांकि कई विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति मुहैया कराते हैं।
अब जब वो बाहर देखते हैं तो उनके पास काफी डेस्टिनेशन आती है। कोई स्टूडेंट यूके जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, आजकल आयरलैंड बहुत बच्चे जा रहे हैं। आमतौर पे एक फीस होती है जो साल की 10 से 15 लाख रुपए होती है, ट्यूशन फीस एक साल की। अब क्या हो रहा है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज ने जो यहाँ के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट 94-95% वाले, उनको स्कॉलरशिप्स देना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे जो कॉस्ट का फैक्टर था वो कम हो चुका है। सो जब बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो कहता है हाँ, इस 3-4 साल की पढ़ाई के बाद मेरा वहाँ पे करियर और अच्छा बन सकता है, अगर वो नहीं तो इंडिया आके भी मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो क्यों नहीं।
नोएडा में रहने वाले मेहुल श्रीवास्तव ने एमिट इंटरनेशनल स्कूल नोएडा से इसी साल 12वीं पास किया है। वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई करने जर्मनी के FH आखेन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अगर उन्हें IIT में दाखिला मिल जाता तो क्या वे फिर भी स्नातक की पढ़ाई के लिए जर्मनी जाते?
अगर मुझे IIT में मिल जाता तो कॉस्ट बहुत बच जाती, बट हाँ, सोचने वाली चीज़ होती है वो। मैं हो सकता है बाहर भी जाता, बिकॉज वहाँ पे एक्सपोजर जो मिल रहा है मुझे बाहर, प्लस मेरा क्या है, मैं IIT से तो कर लेता बट फिर मुझे मास्टर्स के लिए बाहर जाना था। बट फिर क्या होता है, एक बार आप बाहर चले जाते हैं फिर वहाँ से आपको USB जर्मनी से शिफ्ट करना मुझे ज़्यादा आसान रहेगा जितना मुझे इंडिया से US जाना रहेगा।
जर्मनी में मेहुल की पढ़ाई पर 40 से 45 लाख रुपए का खर्च आएगा, लेकिन वहाँ पढ़कर क्या मेहुल का भविष्य यहाँ से ज्यादा बेहतर बन पाएगा? इस सवाल के जवाब में उनके पिता राजेश श्रीवास्तव कहते हैं,
खासतौर से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। हमने यूनिवर्सिटी के डाटा बैंक भी चेक किया, वहाँ पर देखा कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में उनका जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 92-93% के आसपास था, तो उससे हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि जर्मनी अगर हम भेजेंगे इसको, एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, दूसरा कॉस्ट बहुत कम है, तीसरा इंटरनेशनल एक्सपोजर उसको मिल जाएगा, तो इन सब से मिलाकर के एक अच्छे कम कॉस्ट में एक इसको एक इंटरनेशनल और एक अच्छा कैरियर बना सकता है।
गुड़गांव में रहने वाली मृधा आनंद ने स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव से 12वीं पास किया है और PR एंड एडवर्टाइजिंग में BA की पढ़ाई करने के लिए लंदन के वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने विदेश जाने का फैसला क्यों किया?
यहाँ पर जो इंडिया में है ना, यहाँ पे परसेंटेज का बहुत इशू है, इतने सारे बच्चे कट ऑफ इतनी हाई कर देते हैं कि अगर तो हमारे पास स्किल भी हो, और जैसे अगर तो हमारा 90s में नहीं है, जैसे मेरे 90s में नहीं आए हैं, मेरे सिर्फ 82% आई है, फिर भी मैं अगर तो अब्रॉड जाती हूँ, मैं वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में, सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ सकती हूँ, पर इंडिया में बहुत मुश्किल हो जाता है, यू नो, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ इतनी हाई होती है।
मृधा की सहपाठी रहीं और उनकी दोस्त खुशी गोकलानी लंदन के वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में ही डिजिटल मीडिया में BA की पढ़ाई करने जा रही हैं। वो बताती हैं कि पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला लेने में उनके स्कूल ने बहुत मदद की।
बेसिकली हमारे स्कूल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती थी जिसके थ्रू हम लोग को पता चला कि स्कोप अब्रॉड बहुत ज्यादा है। कनाडा से आ रहे थे, US से आ रहे हैं, UK से आ रहे हैं, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया भी वो करे, तो हमारे स्कूल का जो पूरा इंडल्जेंस था इन शोइंग कि क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में क्या क्या ऑफर किया जाता है, बाहर क्या स्कोप है, क्या करके आ सकते हो वापस।
लंदन में इनकी 3 साल की पढ़ाई पर 1 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा खर्च होंगे। इतना पैसा सिर्फ बीए की डिग्री के लिए खर्च करने का फैसला इनके अभिभावकों ने क्या सोच कर लिया? मृधा की माँ सुशीला आनंद कहती हैं,
कट ऑफ के वजह से मेरे पास ऑप्शंस यहाँ कम है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके अपने बच्चे को वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में भेजूँ तो उससे ये फायदा होता है बच्चे को और हमें कि उसको एक एज मिल जाता है और बच्चों के वजह मतलब और यूनिवर्सिटीज़ में से अगर कोई प्लेसमेंट होता है उसको डायरेक्ट वहाँ से मिल सकता है बेस्ट टॉप मोस्ट कंपनीज में।
इन बच्चों के माता पिता को ये विश्वास हो चला है कि दुनिया के इन महंगे और बेहतरीन विश्वविद्यालयों में एक विश्व स्तरीय शिक्षा मिलने के बाद उनके बच्चों को नौकरी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा, कम जद्दोजहद होगी और ये एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। हालांकि भविष्य किसी ने नहीं देखा।
रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा, बता रहे थे कि भारत से उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले छात्रों की तादाद किस तरह से बढ़ रही है। और अब सुनिए खेल की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। खेल की खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। जकार्ता में खेली जा रही विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। साइना ने तीसरे दौर में जापान की सायका ताकीहाशी को सीधे सेटों में 21-18, 21-14 से हराया। वहीं 2 बार विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु ने बड़ा उलटफेर करते हुए चीन की ली ज़ुरुई को मात दी। सिंधु ने मुकाबला 21-17, 14-21, 21-17 से 50 मिनट में जीता। अगले दौर में सिंधु का मुकाबला दक्षिण कोरिया की सुंग जी यून से होगा। और वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम का यूरोपीय दौरा जीत के साथ खत्म हुआ। स्पेन से एक मैच हारने के बाद भारतीय टीम उसके खिलाफ दूसरा मैच जीतने में कामयाब रही। भारत ने मुकाबला 4-2 से जीता। इससे पहले दौरे पर भारत ने फ्रांस से 3 मैच खेले जिसमें सभी में उसे कामयाबी मिली। टीम का ये दौरा आगामी विश्व हॉकी लीग फाइनल की तैयारियों के लिए कराया गया था। और अब बात टेनिस की। मॉन्ट्रियल में खेले जा रहे रोजर्स कप में विश्व नंबर 9 स्पेन के रफाल नडाल तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। नडाल ने दूसरे दौर में यूक्रेन के सेर्जी सताहोस्की को 7-6, 6-3 से हराया। मैच में अपने प्रदर्शन से नडाल खुश दिखे।
ये अच्छा मैच रहा, पूरे मैच में सिर्फ एक खराब गेम रहा। आज तेज हवा के बीच कंडीशंस अच्छी नहीं थी। मैं बेस लाइन से बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं खेलना चाहता था, इसीलिए नीचे खेलने की कोशिश की। मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूँ।
नडाल का आज तीसरे दौर में मुकाबला रूस के मिखेल यूजनी से होगा। और वहीं क्रिकेट में आज भारत श्रीलंका के बीच गोल्ड टेस्ट का तीसरे दिन का खेल होगा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और क्या आपको पता है कि डेटिंग के लिए दुनिया के 5 बेहतरीन शहर कौन कौन से हैं? बीबीसी ट्रेवल्स आपको इनकी सूची बता रहा है। ये जानकारियाँ आइए bbchindi.com पर। ये शहर लोगों की घुलने मिलने, बेहतरीन रेस्तरां, रोमांटिक वॉक के लिए दिलकश वादियों या फिर मनोरंजन की जानी मानी हस्तियों के लिए जो है चर्चित है। आइए bbchindi.com पर। वहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि शोले को रिलीज़ हुए 40 साल हो गए हैं और उस कहानी के बारे में पढ़िए जब गब्बर मरते मरते बचा। और अब सुनिए विश्व समाचार अमल चौधरी से।
चीन ने तियानजिन शहर में हुए धमाके की जगह पर सेना के 200 विशेषज्ञों को भेजा है जो वहां मौजूद रसायनों की सफाई करेंगे। जिस गोदाम में धमाका हुआ उसमें सोडियम साइनाइड और टोइलुन डाइसोसाइनाइड जैसे खतरनाक केमिकल रखे हुए थे। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमले में शामिल 7 मुजरिमों में से 6 को मौत की सज़ा और 1 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि थल सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने इन सज़ाओं की पुष्टि कर दी है। अमेरिका ने पिकासो की बनाई हुई एक पेंटिंग फ्रांस के अधिकारियों को सौंप दी है। द हेयर ड्रेसर नाम की पेंटिंग 9 महीने पहले चोरी हो गई थी। इस पेंटिंग की कीमत करीब 1.5 करोड़ डॉलर यानी कि 97 करोड़ रुपए के आसपास है। इस पेंटिंग को अमेरिका के कस्टम अधिकारी ने पकड़ा। अलकायदा के नेता अमन अल जवाहरी ने तालिबान के नेता मुल्ला अख्तर मंसूर को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। अलकायदा ने एक ऑडियो संदेश में ये घोषणा की। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो संभाला था देवाशीष कुमार ने। अगली मुलाकात 8 बजे विश्व भारती में। तब तक के लिए फैसल महमूद अली, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।